क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
प्रिय श्रोताओं नमस्कार। क्षितिज कार्यक्रम में मैं डॉक्टर देवभरत सिरतन आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको याद दिला दूं कि क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। आज के लिए जो विषय चुना गया है वो है मॉरिशस में हिंदी साहित्य का परिदृश्य। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे मध्य में श्री प्रहलाद रामशरण जी आए हुए हैं। श्री प्रहलाद रामशरण जी के बारे में दो शब्द। श्री प्रहलाद रामशरण जी 23 सालों तक माध्यमिक स्कूलों में हिंदी के अध्यापक रहे। ग्रेजुएशन से पहले आप 5 सालों तक प्राथमिक पाठशाला में हिंदी के अध्यापक रहे। माध्यमिक स्कूल में अध्यापन के साथ साथ आप साहित्य सृजन करते रहे। आपकी अब तक 75 पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनमें लोक साहित्य की पुस्तकें, अनुसंधानात्मक निबंध और मॉरिशस देश का इतिहास शामिल है। आपकी रचनाओं में गांधी, मनीला डॉक्टर, पंडित आत्माराम और पंडित काशीनाथ किस्तो के कार्यों का उल्लेख किया गया है। इन पुस्तकों के जरिए आपने बताया इन्होंने हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति और हिंदीत्व के संरक्षण और विकास में क्या योगदान दिया है। श्री प्रहलाद रामशरण जी नमस्कार।
नमस्कार श्री रतन जी।
मैं विश्व हिंदी सचिवालय की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय के गहराई में जाने से पहले कृपया आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि मॉरिशस में हिंदी साहित्य के लेखन की शुरुआत कब और किस रूप में की गई थी।
भाई श्री रतन जी, 1921 में पंडित आत्माराम विश्वनाथ ने मॉरिशस का इतिहास पुस्तक का सृजन किया। वह पुस्तक 2 वर्षों बाद छप करके मॉरिशस में आई जी 1923 में, और वही मॉरिशस के हिंदी साहित्य की जो प्रथम पुस्तक है
जी
प्रकाशित। लेकिन वो केवल इतिहास की पुस्तक नहीं थी। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा
जी
कि मॉरिशस का जो इतिहास है डच पीरियड से 1923 तक का जो इतिहास है वो केवल 95 पृष्ठों में देश का इतिहास।
अच्छा अच्छा।
लेकिन उसके अलावा 350 पृष्ठों की जो पुस्तक है उसमें पंडित आत्माराम जी ने 15 शोधपूर्ण निबंध लिखे हैं।
अच्छा।
और विविध विषयों को उन्होंने उन निबंधों में
जी।
और इसलिए मैं कहता हूँ कि मॉरिशस के साहित्य का जो शुरुआत है उसी पुस्तक के जरिए हो संभव हो पाया है। अच्छा, उस समय मॉरिशस में 1923 में
जी
हिंदी लेखक नहीं थे, कविताएं नहीं लिखी जाती थी
जी।
लेकिन उन्होंने क्या एक अध्याय लिखा है क्रियोलों का काव्य, और उन्होंने 6 क्रियोली गीतों को हिंदी में अनुवाद करके उसमें रखा है,
अनुवादात्मक कार्य।
तो इसका मतलब है कि साहित्य की दृष्टि से
जी
उसका महत्व है।
बिल्कुल।
जबकि हिंदी साहित्य का कविताओं का सृजन नहीं हो रहा था उस समय उन्होंने एक अध्याय लिखा है
जी।
तो इस प्रकार से मॉरिशस में हिंदी साहित्य का जो सृजन है वो मॉरिशस पंडित आत्माराम की पुस्तक मॉरिशस के इतिहास से उसकी शुरुआत हुई है।
तो शुरू के कुछ रचनाकारों के कुछ नाम आप बता सकते हैं इनके अलावा।
अच्छा, उस समय 1920 में हीरालाल गुप्त जी थे
जी।
और 1-2 लेखक जो कि उस समय लेखक तो ढूंढने पर भी नहीं मिलते।
अच्छा,
थे
नहीं थे।
तो हीरालाल गुप्त की कुछ कहानियां मिलती हैं, उनकी कुछ कविताएं मिलती है, और वो 1950 तक हिंदी साहित्य से जुड़े रहे हैं। तो आदि लेखकों में एक बाद में चल करके उसी समय गणेशी सिंह हुए, वो रोसबल के रहने वाले थे, तो उन्होंने कविताएं की। और 1923, 1924, 1925 में उनकी 8-10 कविताएं मॉरिशस इंडियन टाइम्स पत्रिका में छपी है, जो कि मैंने उन सबको संग्रहित करके एक पुस्तक में प्रकाशित किया है।
तो समय के साथ मॉरिशस की हिंदी साहित्य की के परिदृश्य का विस्तार होने लगा और फैलता गया।
तो पंडित आत्माराम ने जब वो मॉरिशस का इतिहास वो सामने रखा, तब मॉरिशस में खलबली मच गई। उन्होंने वह पुस्तक जो की है दुखी गंगा को समर्पित किया था।
तो श्री प्रहलाद रामचरण जी, शुरुआती दौर में मॉरिशस में हिंदी साहित्य की जो रचनाएं लिखी गई थी वे मुख्य रूप से किस विधा पर थी या किन विधाओं पर आधारित?
अच्छा, निबंध विधा पर थी और ये अनुसंधानात्मक, मान लो कि हमारे पूर्वजों के जीवन शैली इतिहास को उन्होंने सामने रखा था
जी।
और सन 20 में ये गणेशी सिंह ये एक हुए जिन्होंने मॉरिशस में हिंदी पत्रकारिता की नींव डाली थी। तो उसी मॉरिशस इंडियन टाइम्स के पन्नों में इन हीरालाल गुप्त, गणेशी सिंह और गणपति दास आदि के बहुत सारी कविताएं हमको मिलती हैं।
तो इसका मतलब यह है कि निबंध के साथ साथ कविताएं भी लिखी,
कविताएं भी लिखी जाने लगी।
तो हिंदी साहित्य के इस परिदृश्य में लेखक के रूप में आपका पदार्पण कब होता है?
अच्छा, हम तो हिंदी अध्यापक बने 65 में और विदेश गए पढ़ने। उस समय तक मैं निबंध प्रतियोगिताओं में, आर्य सभा की निबंध प्रतियोगिताओं में मैं प्रथम आता रहा। लेकिन जब भारत पढ़ने गया तो वहाँ पर मुझे एक सज्जन से भेंट हुई। उन्होंने मुझे मॉरिशस की लोक कथाएं दी, जो भोजपुरी लोक कथाएं थी। जब पढ़ करके उनको लौटाने गया तो मैंने कहा कि ये इनमें से बहुत सारी कहानियाँ जो की है, जो बचपन में मैंने अपनी माँ से सुनी है
जी।
तो बच्चू प्रसाद सिन्हा ने उनकी पुस्तक दी। तो उन्होंने कहा, अच्छा रामशरण, तब तुम अपनी माँ से सुनी हुई कथाओं को लिखो।
अच्छा,
और यहीं से मेरी हिंदी लेखन की शुरुआत होती है। बीए पढ़ाई के साथ साथ मैंने दो हिंदी पुस्तकों की रचना कर डाली, मॉरिशस की लोक कथाएं और डॉक्टर शिवसागर राम गुलाम की राजस्थान यात्रा, क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का ये अध्यक्षता करने गए थे अलवर में, तो उन पर एक पुस्तक। अब मेरी जो मॉरिशस की लोक कथा छपी राजपाल एंड सन्स, नई दिल्ली के सबसे बड़े पब्लिशर, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस पुस्तक पर 75 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में जो हो रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के ये जो शिक्षा विभाग है उससे मुझे मॉरिशस की लोक कथाओं पर साहित्यिक विविधा पुरस्कार मिलता है और 1,000 रुपये।
अच्छा, बधाई के पात्र।
तो ये मेरी साहित्य सृजन की शुरुआत है।
और बाद में आपने की,
और बाद में चल करके मैंने इतिहास पर पुस्तकें लिखी है, लोक साहित्य पर 8-10 पुस्तकें लिखी है, निबंध पर तो 10-12 पुस्तकें लिखी है। और मेरे जो निबंध हैं वो अनुसंधानात्मक होते हैं, जिस विषय को मैं लेता हूँ उसकी तह तक मैं जा करके, और वो संदर्भ के रूप में लेखकों द्वारा, छात्रों द्वारा उसका प्रयोग होता है। इतिहास पर मैंने 3-4 पुस्तकें लिखी है, पंडित आत्माराम की पुस्तक, वो मॉरिशस का इतिहास का पुनर्मुद्रण करवाया
जी हाँ,
उसकी भूमिका और उसके विश्लेषण के साथ। तो इस प्रकार से मेरा जो साहित्य सृजन है, और बाद में चल करके मैं इंद्रधनुष पत्रिका के जरिए ये हिंदी सेवियों पर मैंने बहुत सारा कार्य किया है।
आप माध्यमिक स्कूल के अध्यापक रहे और इतनी सारी रचनाएं आपने कब की और कैसी की?
अच्छा, मेरी सारी छुट्टियां जो की थी अप्रैल में 1 सप्ताह, अगस्त में 1 महीने और नवंबर दिसंबर 2 महीने की छुट्टियां मिलती थी। ये सारी छुट्टियां मैंने मॉरिशस के अभिलेखागार में बिताया है और नोट मैंने लिया है। तो 1900 का जो इतिहास है, मॉरिशस का इतिहास, क्या राजनीतिक, क्या साहित्यिक और क्या सांस्कृतिक इतिहास, वो सब मेरे नोटों में पड़े हुए हैं और सब मेरी आंखों के सामने से गए हैं। इसीलिए जो कुछ मैं लिखता हूँ अभी तक किसी भी लेखक ने मुझे नहीं बताया है कि आपका एक लाइन या ये बात जो की है वो गलत है।
मतलब खोजपूर्ण कार्य करने के बाद आप लिखते रहे
हैं और मुझे मालूम है कि कौन सी सामग्री कहाँ पर है। इसलिए मैं इस देश के नौजवान और नवयुवतियों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे पूर्वजों ने, हमसे पूर्व के जो लेखकों ने जो कुछ लिखा है उसको जाकर आप शोध कीजिएगा और उसके बलबूते पर आप जो कुछ करेंगे वो अनोखा होगा।
आप त्रिभाषीय पत्रिका के बारे में कुछ बताइए।
अच्छा, त्रिभाषी पत्रिका निकालने के पीछे एक मकसद रहा है। 88 तक हमने देखा कि मॉरिशस में दर्जनों हिंदी के लेखक हुए हैं, हिंदी सेवी हुए हैं जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत कार्य किया गया है, लेकिन किसी कारणवश उन पर कुछ नहीं लिखा गया है। तब हमने और मॉरिशस में और एक प्रक्रिया चली है, छद्म लेखन। तो छद्म लेखन का पर्दापाश करने के लिए हमने इंद्रधनुष को निकाला और अभी तक हमने 36 विशेषांक निकाले हैं। जितने लोगों को मान लो कि गर्त में, विस्मृति के गर्त में डाल दिया गया था, उनको मैंने एक एक करके निकाला है और उनको अमरता प्रदान किया है इंद्रधनुष के जरिए।
जी, ये तो ये पत्रिका कब कब निकलती है, कितने महीनों के बाद निकलती है?
अच्छा, शुरू में हम उसको जब हिंदी में निकलता था 88 से 99 तक केवल हिंदी में, तब हम दो दो तीन तीन पत्रिकाएं हर साल निकालते थे, लेकिन 2000 से इंद्रधनुष त्रिभाषी पत्रिका बन गई है और वो केवल हम वर्ष में पहले दो निकालते थे, अब एक निकाल रहे हैं।
तो श्री रामचरण जी, आज साल 2020 में हिंदी साहित्य के परिदृश्य की वास्तविक स्थिति क्या है, कुछ बताइए।
ये बड़ी दुख की बात है, अभिमन्यु अनंत जी चले गए हैं, हम भी वृद्ध हो गए हैं, धुरंधर भी वृद्ध हो गए हैं, चिंतामणि जी चले गए, लेकिन ये दुख की बात है कि नए जो उभरते हुए लेखक जो कि हैं सामने नहीं आ रहे हैं, यह बड़े दुख की बात है। और हम नौजवान नवयुवतियों से निवेदन करेंगे कि वे लोग इस दिशा में आएं और जो कार्य हमने शुरू किया है उसको आगे बढ़ाएं, तभी तो हिंदी साहित्य सृजन का सिलसिला वो चलता रहेगा।
लेखन का कार्य जारी रखना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, क्षितिज कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि थोड़ी देर पहले आप श्री प्रहलाद राम शरण जी को सुन रहे थे और आज का हमारा विषय था मॉरिशस में हिंदी साहित्य का परिदृश्य। श्रोताओं, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेष धन्यवाद श्री प्रहलाद राम शरण जी को जाता है। तो अगले कार्यक्रम तक आप डॉक्टर देवव्रत श्रीरतन को आगे दीजिए। नमस्कार।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा